माहिर पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम में था। वहां उससे पूछताछ की जा रही थी। इशिका के लिए क्रिस्टल ने रूल्स तोड़ते हुए आयशा ने जो भी स्टेटमेंट दिया था उसके वीडियो फुटेज माहिर को दिखा दी थी। वीडियो देखने के बाद भी माहिर को ये यकीन नहीं हो रहा था कि आयशा उसके खिलाफ कुछ कर सकती है। अचानक से माहिर का बिहेवियर बदला हुआ लग रहा था और वो आयशा के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा था। माहिर इशिका से भी बदतमीजी कर रहा था। उसके बदले हुए इस बर्ताव का मतलब उन्हें समझ नहीं आया। इशिका को पता चला कि अरेस्ट होते टाइम माहिर के पास किसी का मैसेज आया था। इशिका ने माहिर का मोबाइल लिया और चेक किया तो वो मैसेज आयशा का था और उसने माहिर को एक फ़ोटो भेजी थी। फ़ोटो देखते ही इशिका जल्दी से दौड़कर इंटेरोगेशन रूम में माहिर के पास पहुंची और तेज सांसें लेते हुए बोली, अच्छा तो इसलिए तुम्हारा मुंह बंद है? आयशा प्रेग्नेंट है, क्या वो तुम्हारा बच्चा है? आयशा ने माहिर को एक रिपोर्ट भेजी थी। वो उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट थी। उसमें साथ ही कंसीव करने की डेट भी लिखी हुई थी। माहिर हल्का सा हंसा और सिर हिलाकर बोला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वो नक्श राजवंश को डेट कर रही है तो उसके पेट में मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? वो नक्श राजवंश का बच्चा है। इशिका समझ गई थी कि आयशा माहिर के बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसलिए माहिर अपना मुंह नहीं खोल रहा था। माहिर के बाप ने उसके साथ बहुत बुरा किया था और उसने हमेशा यही सोचा था कि वो अपने बच्चों को प्यार से रखेगा। हालांकि आयशा ने जो भी किया उसके बाद माहिर उससे नफरत करता था, लेकिन अब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। जो चीज़ वो अपने बच्चों को नहीं दे पाया वो आयशा नक्श राजवंश से शादी करने के बाद अपने बच्चों को वो पोजीशन और पावर दे पाएगी। बस यही सोचकर माहिर ने अपना मुंह बंद कर रखा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इशिका के चेहरे पर शिकन की एक लकीर नहीं थी। इशिका माहिर के पास गई और हल्का सा झुकते हुए कहा, तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। क्या? माहिर ने हल्का चौंकते हुए पूछा। वो क्या है ना, हम तुम्हारा फ़ोन टेप कर रहे थे तो तुम दोनों ने जो भी बात थी वो हम सब ने सुनी है, इशिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा। ये सब सुनकर माहिर हड़बड़ा गया था। इशिका वापस ऊपर उठी और तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, और तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद से पता नहीं लगा पाऊंगी? क्या कहा था तुमने, आयशा ने मुझसे मेरा कुछ ज़रूरी चुरा लिया है? माहिर काफ़ी घबरा गया था और वो इशिका की तरफ देख रहा था। डर उसकी आंखों में साफ नज़र आ रहा था। मुझे समझ आ गया है कि उसने मेरा क्या चुराया है। हम दोनों ही आदर सिंघानिया की बेटियां हैं, वो मुझसे क्या चुरा सकती है माहिर? इशिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा। अचानक इशिका के चेहरे पर चमक आ गई थी। वो राधिका से बहुत प्यार करती थी और उसकी बहुत इज्जत करती थी। ये ख्याल ही उसके लिए काफी था कि वो राधिका की बेटी हो सकती है। उसके तेज दिमाग ने ये समझ लिया था। इशिका ने माहिर की आंखों में देखते हुए कहा, तो तभी तुमने कहा था कि आयशा ने मेरी जिंदगी चुरा ली है? अब समझ आया कि अब तक आयशा आशीष को पैसे क्यों दे रही थी? तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं हुआ कि उस लड़की को सब सच पता था? तुम दोनों के बीच एक रिश्ता है, उसके बावजूद उस लड़की ने तुम्हारे साथ संबंध बनाए? अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही, कुछ लोगों को गलत फहमियों में रहने की आदत होती है, माहिर ने काफी आराम से जवाब दिया। वो अपनी तरफ से आयशा का सच छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। माहिर इशिका को कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। तभी इशिका ने भौहें उठाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं डीएनए टेस्ट करवा लूंगी, फिर तो सब सामने आ ही जाएगा ना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारी तरह मैं जेल में नहीं हूँ और मेरे पास बहुत सारा टाइम है। मैंने बहुत कुछ झेला है तो थोड़ा और झेल लूंगा, जानती हो ना मेरा बाप कैसा इंसान था, माहिर ने विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की। इशिका को उस पर तरस आ रहा था। वो सख्त आवाज में बोली, नहीं माहिर दास, तुमने कुछ नहीं झेला है। तुम्हारा बाप कैसा भी इंसान क्यों ना रहा हो, लेकिन उसने आयशा को ब्लैकमेल करते वक्त सबसे पहले तुम्हारी फीस और बाकी जरूरतें पूरी करने का सोचा है। मरते वक्त भी उसने तुम्हें राज बताया ताकि उसके जाने के बाद भी तुम आयशा को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ले सको। तुम एक बुरे इंसान हो तो विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश मत करो। चाहते तो पहले ही सब कुछ ठीक कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने खुद का फायदा सोचा और इस वजह से आज इस हाल में हो। इशिका की बातें सुनकर माहिर ने उसकी तरफ घूर कर देखा, लेकिन इशिका पर उसकी डरावनी नजरों का कोई असर नहीं हुआ। वो इंटेरोगेशन रूम से बाहर आ गई। इशिका के आते ही क्रिस्टल तुरंत उसके पास गई। इशिका ने सख्ती से उससे पूछा, उसे कितनी सजा होगी? तुम जानती हो कि फांसी की सजा पर रोक है तो 14 साल की जेल हो सकती है। बाकी उसने सबूत के साथ छेड़छाड़ की और एक निर्दोष इंसान को फंसाने की कोशिश की। सब कुछ प्लान से किया गया था तो सजा बढ़ भी सकती है। हो सकता है कि उसे अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त तक जेल में बिताना पड़े, क्रिस्टल ने जवाब दिया। इसका मतलब वो मरने वाला नहीं है, मुझे कुछ भी करके वो राज उससे उगलवाना है क्रिस्टल, इशिका ने थोड़ा बेचैनी से कहा। क्या हुआ, वो आयशा से इतना प्यार करता है क्या कि उसने अपना मुंह नहीं खोला? क्रिस्टल ने हैरानी जताते हुए पूछा। तुम आयशा को जानती नहीं हो कि वो कैसी इंसान है, उसका बस चले तो वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मैनिपुलेट कर ले और उसे अपने हिसाब से चलने पर मजबूर कर दे, इशिका ने गहरी सांस लेकर कहा। हाँ, मैं तो उसे तुम्हारी बहन के तौर पर जानती हूँ, याद है ना, मिडिल स्कूल में हम साथ थे, क्रिस्टल ने बताया। अचानक ही क्रिस्टल के चेहरे के भाव सख्त हो गए। ये वही वक्त था जब क्रिस्टल और ईशिका अलग हुई थी। ईशिका के चेहरे पर भी उदासी के भाव थे। उसने धीरे से कहा, उस वक्त क्रिस्टल ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था ईशिका सिंघानिया। हम बेस्ट फ्रेंड थी और हमने उस हाई स्कूल में जाने का सपना देखा था, एक साथ तैयारी की थी। फिर तुम्हारे नंबर कम कैसे आ सकते हैं? मुझे अच्छे से याद है, तुम मुझे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट थी और आंख बंद करके भी सभी सवालों के जवाब दे सकती थी। ईशिका ने गहरी सांस ली और कहा, आयशा उस हाई स्कूल में जाने वाली थी। तुम मेरी माँ माल्लिका को जानती हो ना, वो नहीं चाहती थी कि मैं और आयशा एक हाई स्कूल में जाए। एग्जाम की एक रात पहले वो मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे साफ कह दिया था कि मैं उस एग्जाम को क्लियर ना करूं, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उस वक्त मैं इतनी समझदार नहीं थी तो मैंने जानबूझकर पेपर अच्छा नहीं दिया और इस वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। उस वक्त जो भी हुआ था वो ईशिका ने उसे बता दिया था। वो पहले भी बताना चाहती थी लेकिन क्रिस्टल उससे इतना नाराज हो चुकी थी कि उसने उसे बताने का मौका नहीं दिया। क्रिस्टल को अब बुरा लग रहा था। उसने धीरे से कहा, ये बात तुम पहले भी बता सकती थी। हम दोनों अलग नहीं होती, हम दोनों किसी छोटे हाई स्कूल में एडमिशन ले लेती, लेकिन कम से कम दोनों साथ तो रहती। मैं तुम्हारे सपनों को तोड़ना नहीं चाहती थी। तुम काफी प्रिविलेज्ड हो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे कम नंबर आने पर भी तुम्हें वहां एडमिशन दिला सकती थी। मेरी जिंदगी पहले से ही पूरी तरह बिखरी हुई है, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, ईशिका ने जवाब दिया। ईशिका की कहानी सुनकर क्रिस्टल इमोशनल होने लगी, उसकी आंखें नम हो रही थी। ईशिका ने क्रिस्टल का कंधा सहलाया तो वो नॉर्मल हो गई। अचानक क्रिस्टल ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा मिस्टर राजवंश, और तुम्हारी शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने बहुत एंजॉय किया होगा ना अपनी शादी में?
ईशिका एक पल के लिए चुप हो गई, उसे समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे। तभी क्रिस्टल ने कहा, याद है ना, हमने प्रॉमिस किया था कि जो भी पहले शादी करेगा दूसरी वाली उसकी ब्राइडमेड बनेगी। हालांकि मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था लेकिन बाद में तुम्हें अनब्लॉक भी कर दिया था। तुमने एक बार मुझे बताया तक नहीं कि तुम शादी कर चुकी हो। ईशिका थोड़ा सा हिचकिचाई और फिर बोली, वो एक्चुअली हम दोनों की शादी सिर्फ पेपर्स में ही हुई है, तो तुम चाहो तो अभी भी मेरी ब्राइडमेड बन सकती हो, पर इसके लिए मेरी एक शर्त है। वो क्या? क्रिस्टल ने हैरानी से पूछा। मेरी शादी के दिन तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं लग सकती, वरना मिस्टर राजवंश का ध्यान मुझे छोड़कर तुम्हारे ऊपर चला जाएगा, ईशिका ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया। उसके गाल लाल हो रहे थे। क्रिस्टल ने उसकी बात पर हामी भरी, उसे उसके सीनियर्स ने बुला लिया था तो उसे जाना पड़ा। वहीं ईशिका भी मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ पलटी तो वहां अभिमन्यु खड़ा था जो उनकी बातें सुन रहा था। ईशिका ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले वो अभिमन्यु और अपनी शादी के सपने बुन रही थी, जबकि उन दोनों के तलाक के पेपर तक साइन हो गए थे। ईशिका ने जल्दी से अभिमन्यु की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, मुझे गलत मत समझिएगा, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। सफाई मत दीजिए मिस सिंघानिया, मुझे सब पता है, अभिमन्यु ने सख्त आवाज़ में कहा। दोनों के चेहरे कुछ और ही कह रहे थे। एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी कि तभी अभिमन्यु ने कहा, हमें सिंघानिया हाउस चलना है ना? हाँ, मैं अब डीएनए टेस्ट करवाने में और देर नहीं करना चाहती, ईशिका ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी और वो गाड़ी के अंदर आ गए थे। हालांकि गाड़ी काफी तेजी से चल रही थी लेकिन ईशिका को अभी भी स्पीड काफी कम लग रही थी। ईशिका के चेहरे पर पूरे रास्ते मुस्कुराहट बनी रहेगी ये सोचकर कि वो राधिका की बेटी है। जल्द ही वो सिंघानिया हाउस पहुंच चुके थे। ईशिका जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और अभिमन्यु से कहा, मिस्टर राजवंश प्लीज मेरा वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ईशिका ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि अचानक सिंघानिया विला का दरवाज़ा खुला। अंदर से आदर्श और राधिका आ रहे थे। आदर्श के हाथ पर गहरी चोट लगी थी और बहुत खून निकल रहा था। राधिका काफ़ी परेशान लग रही थी। आदर्श प्लीज़ आप अपने हाथ को मूव मत कीजिए, हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं, आपको चक्कर तो नहीं आ रहे हैं ना? राधिका ने परेशान होते हुए कहा। सिंघानिया फैमिली का ड्राइवर उस वक्त वहां मौजूद नहीं था, सिर्फ राधिका और आदर्श ही वही थे। राधिका की तबीयत खराब होने की वजह से उसने सालों से ड्राइविंग नहीं की थी, तो वहीं आदर्श इस हालत में नहीं था कि वो ड्राइविंग कर सके। मैं टैक्सी बुला लेती हूँ, वो जल्द ही आ जाएगी, राधिका ने बाहर आकर आदर्श से कहा। तभी उसकी नज़र ईशिका पर पड़ी। अचानक उसके चेहरे पर हल्की चमक आ गई। वो तेज आवाज में बोली, ईशिका तुम वहां क्या कर रही हो? जल्दी यहाँ आओ, देखो तुम्हारे डैड को चोट लगी है, हमें उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। उस वक्त ईशिका ने कुछ नहीं सोचा, वो आदर्श और राधिका को लेकर अभिमन्यु की गाड़ी में आई और जल्द ही वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। आदर्श का काफी सारा खून बह गया था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद राधिका अकेले आदर्श को नहीं संभाल सकती थी। आदर्श ईशिका का पिता था लेकिन फिर भी वो उसे पसंद नहीं करती थी। राधिका के लिए मजबूरी में उसे आदर्श को अंदर ले जाने में मदद करनी पड़ी। नर्स ने उसके हाथ की तरफ देखा, फिर उसने जल्दी से कहा, आपका काफी खून बह गया है, ब्लड की जरूरत पड़ेगी, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, आदर्श ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। नर्स ने उसकी बात पर सिर हिलाया और तेज आवाज में वार्ड बॉय से कहा, पेशेंट का काफी सारा खून बह गया है, जल्दी से ब्लड बैंक से ए बी पॉजिटिव ब्लड लेकर आओ। नर्स उसके बाद में राधिका के साथ आदर्श को लेकर अंदर ऑपरेटिंग रूम में चली गई थी। वो बस उन्हें जाते हुए देख रही थी। अचानक ईशिका के चेहरे का रंग उड़ गया था और उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इशिका के सपनों की दुनिया जो थोड़ी देर पहले ही बसी थी वो एक पल में किसी ने चकनाचूर कर दी हो। अभिमन्यु भी वहीं पर खड़ा था। इशिका को रोते हुए देखा तो वो उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आपने अभी सुना उन्होंने क्या कहा? इशिका ने सुबकते हुए कहा। क्या? अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा। उनका उनका ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव है जबकि मेरा ओ पॉजिटिव। मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। इशिका बस रोए जा रही थी। उसे इस तरह रोते हुए देखकर अभिमन्यु को बुरा लग रहा था। उसने कसकर अपनी मुठ्ठियां बंद कर ली। अभिमन्यु उसे कुछ कहता इससे पहले मालविका दौड़कर वहां आई। उसने इशिका को देखा तो उसने तुरंत इशिका से पूछा, तुम्हारे डैड कहाँ है? उन्हें चोट लगी है, तुम उनके साथ आई हो ना? वो किस तरफ गए हैं? इशिका नम आंखों से मालविका की तरफ देख रही थी। तभी वो कड़वाहट से मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम श्योर हो कि वही मेरे डैड है? इशिका की बात सुनकर मालविका को झटका सा लगा। वो गुस्से में बोली, ये क्या बकवास कर रही हो, वही तुम्हारे डैड है। तुम झूठ बोल रही हो, उनका ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव है और मेरा ओ पॉजिटिव, वो मेरे डैड कैसे हो सकते हैं? इशिका ने जवाब दिया। उसकी बातें मालविका को हैरान कर रही थी। मालविका ने इशिका के मुंह पर हाथ रखा और उसे खींचते हुए अभिमन्यु से दूर लेकर गई। उसने इशिका से कहा, अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम उनकी बेटी नहीं होती तो मुझे सिंघानिया हाउस में रहने को नहीं मिलता। तुम बस ये याद रखो कि तुम्हारा बाप आदर्श है, चाहे वो सच हो या झूठ। इसका मतलब आप जानती थी कि वो मेरे डैड नहीं है? कौन है मेरे डैड? इशिका ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता। उस वक्त मैंने एक साथ तीन लड़कों को डेट किया था, उसमें आदर्श सबसे अमीर था तो मैंने उसे तुम्हारी बेटी बता दिया। अब अपना मुंह बंद रखना, मालविका ने जवाब दिया। उसे अच्छा मौका मिल गया था इशिका की पहचान छुपाने का और वो इसका बखूबी इस्तेमाल कर रही थी। इशिका गुस्से में तेज सांसें ले रही थी। उसने मालविका का हाथ पकड़ा और सख्त आवाज में बोली, बताओ मेरा बाप कौन है? तुम सब अच्छे से जानती हो, ऐसा करो खुद ही पता लगा लो। क्या पता आदर्श ही तुम्हारा बाप निकले या कोई और अमीर आदमी। हो सकता है तुम्हारा बाप कोई भिखारी निकले, मालविका ने सिर हिलाकर कहा। वो जानबूझकर इशिका को कंफ्यूज कर रही थी ताकि वो गलती से भी सच तक ना पहुंच पाए। वहीं उसके मन में भी काफी कुछ था। मालविका ने अपने मन में कहा, इशिका ने ये क्यों कहा आदर्श उसके पिता नहीं है? राधिका उसकी माँ है तो उसके पापा आदर्श ही होने चाहिए। कहीं राधिका का किसी और के साथ? अगर ऐसा है तो इस लड़की का बाप कौन होगा?